अध्याय 28। अविश्वासियों के साथ विवाह न कीजिए। मसीहियों और अविश्वासियों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के विषय में मसीही संसार में धर्मशास्त्र की शिक्षा की ओर आश्चर्यजनक भयप्रद उदासीनता पाई जाती है। अनेकों जो परमेश्वर का भय रखने और उससे प्रेम रखने का दावा करते हैं, निःसीम ज्ञान से परामर्श लेने के बदले अपने ही मानसिक झुकाव का अनुसरण करते हैं। भविष्य तथा इस संसार में दोनों व्यक्तियों के आनंद और कुशलता से निकट संबंधित वालों में तर्क, न्याय और परमेश्वर का भय एक ओर रखकर अंध प्रवृत्ति हठी संकल्पों को अपना आधिपत्य जमाने दिया जाता है। पुरुष स्त्री जो साधारणतः सद्विवेकी और विचारवान होते हैं, ऐसे समय में परामर्श के प्रति अपने कान बंद कर लेते हैं। वे अपने शुभचिंतक, मित्र, कुटुंबी तथा परमेश्वर के भक्तों की सलाह व आवेदन की ओर कान नहीं देते हैं। चेतावनी या सावधान करने वाले प्रत्येक भाव को अशिष्ट या बाधक समझा जाता है, और विश्वासी मित्र को विश्वास योग्य होकर विनय प्रार्थना करता अपना बैरी समझते हैं। ये सब शैतान की इच्छानुकूल होता है। आत्मा के चहु ओर वो अपना मंत्र चलाता है। आत्मा उससे प्रभावित होकर उत्तेजित हो जाती है। शासन की लगाम तर्क के द्वारा लिप्सा के गले पर गिरा दी जाती है। अपवित्र लालसा अपना राज जमा लेती है। शिकार तब कैद और दुख में फंसा रहकर होश में आता है, पर अब तो काफी देर हो गई। ये तो कल्पना द्वारा खींचा हुआ कोई चित्र नहीं है, परंतु सत्य घटना का वर्णन है। जिन संयोगों का परमेश्वर ने वर्जित किया है, उनकी अनुमति उसने नहीं दी है। प्राचीन इसराइल को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अपने पड़ोसी मूर्ति पूजकों के साथ विवाह न करना, विवाह न करना, न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना। कारण दिया गया है, असीम ज्ञान ऐसे संयोगों का परिणाम देखकर घोषित करता है, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वो तुझको शीघ्र सत्यनाश कर डालेगा, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी पर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। नए नियम में भी मसीहियों के ईश्वर रहित लोगों के साथ विवाह निषिद्ध है। कुरिन्थियों की पहले पत्री में पौलुस प्रेरित का कथन है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वो उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे वो विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। फिर दूसरी पत्री में वो लिखता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वास के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकल और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा और तुम बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। दूसरा कुरिन्थियों 6:14-18। परमेश्वर के जनों को वर्जित भूमि पर पदार्पण कदापि नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ विवाह करने के लिए वर्जित किया है। बहुधा अपरिवर्तित हृदय अपनी ही इच्छा पर चलना चाहता है, जिसके फलस्वरूप परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत विवाह कर लिया जाता है। इसी कारण अनेकों पुरुष और स्त्रियां इस संसार में आशाहीन और ईश्वर रहित हैं। उनकी उच्च अभिलाषाएं मर जाती हैं, परिस्थितियों की जंजीरों से जकड़कर शैतान के जाल में फंस जाते हैं। जो मनोवेग और भावनाओं द्वारा प्रशासित किए जाते हैं, वे जीवन में कड़वी फसल करेंगे, और उनके ऐसे व्यवहार का परिणाम उनकी आत्माओं की ही हानि होगी। जो सत्य को स्वीकार करते हैं पर अविश्वासियों के साथ विवाह करके परमेश्वर की इच्छा की रौंदते हैं, वे उसकी दया दृष्टि से हाथ धोकर पश्चाताप के कार्य को कटु बनाते हैं। अविश्वासियों का नैतिक चरित्र कितना ही सराहनीय क्यों न हो, परंतु जब उसने परमेश्वर की मांगों की पूर्ति नहीं की और ऐसे महान उद्धार को तुच्छ जाना है, तो ये बात एक पक्का प्रमाण है कि ऐसे विवाह का आयोजन नहीं कह दे, मैं चेतना युक्त मसीही हूं। सप्ताह के सातवें दिन को बाइबल के अनुसार सब्बत विश्रामवार मानता हूं। हमारा विश्वास और सिद्धांत हमें दो विपरीत दिशाओं की ओर ले जाते हैं। यदि मैं परमेश्वर की इच्छा का सिद्ध ज्ञान प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता जाऊं तो हम साथ साथ रहकर आनंदित न रह सकेंगे, क्योंकि मैं अधिकाधिक मसीह की समानता में परिणत हो जाऊंगा। यदि मसीह में आपको कोई सुंदरता प्रतीत न हो, सत्य की ओर आकर्षण न हो, तो निस्संदेह संसार को उन बातों की ओर जिनमें मुझे रुचि नहीं है आपका अनुराग बढ़ता जाएगा, और मैं ईश्वरीय बातों की ओर रुचि रखूंगा जिनसे आपको कोई प्रेम नहीं है। आध्यात्मिक बातें आत्मिक नेत्रों में ही दृष्टिगोचर होती हैं। जब तक आप में आत्मिक दर्शन को प्रभाव हो, आप मेरे ऊपर परमेश्वर के प्रभुत्व की मात्रा का बोध न कर सकेंगे। अपने स्वामी के प्रति जिसका मैं सेवक हूं, मेरे सही उत्तरदायित्व का भी आपसे मूल्यांकन न हो सकेगा, जिसके फलस्वरूप कदाचित आप समझें कि धार्मिक कर्तव्यों के कारण मैं आपका उपेक्षक हूं। मैंने परमेश्वर से अपना जो अनुराग बढ़ाया है उसके कारण आपके मन में ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होगा, जो आपके वास्तविक आनंद से वंचित कर देगा। मैं भी अपने धार्मिक विश्वास रूपी पंथ का अकेला पथिक रह जाऊंगा जब आपके विचारों में परिवर्तन आ जावे, जब आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति अपने दायित्व का बोध आ जावे, जिसके फलस्वरूप आप मेरे उद्धारकर्ता को प्रेम करने लगें, तब हमारे संबंध का पुनः निर्माण हो सकेगा। इस प्रकार एक विश्वासी मसीह के लिए ऐसा परित्याग करता है जिसका समर्थन उसका विवेक भी करता है। इस परित्याग से ये भी प्रमाणित होता है कि अनंत जीवन कैसा मूल्यवान है, जिसकी हानि उठाने का कोई दुसाहस नहीं कर सकता। उसे इस बात का बोध भी रहता है कि यदि कोई व्यक्ति मसीह की अपेक्षा संसार से प्रेम करता है अथवा मसीह के किसी अनुगामी को भटकाने की क्षमता रखता है, तो ऐसे व्यक्ति से संबंध जोड़ने की अपेक्षा अविवाहित ही रहना श्रेयस्कर है। अज्ञानतावश जोड़ा हुआ संबंध तोड़ना ही उत्तम है। विवाह संबंध मसीही में जोड़ना सुरक्षित है। मानवीय प्रेम को दिव्य प्रेम की ही प्रेरणा आवश्यक है। मसीह के शासन के अंतर्गत ही गंभीर सत्य एवं स्वार्थहीन प्रेम संभव है। यदि भावी संबंधी के चरित्र पर पूर्णतः विचार किए बिना मंगनी हो गई है, तो ये न सोचिए कि इस विधि के कारण आप ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए बाध्य हैं जिससे न आप प्रेम कर सकेंगे न जिसका आदर। पहले तो आप बड़े सोच विचार के साथ मंगनी करिए, पर विवाह के उपरांत यदि आपके संबंध विच्छेद का भय है, तो ये विवाह के पहले ही हो जाना अत्युत्तम है। कदाचित आप कहें कि आप वचन दे चुके हैं, क्या उसे तोड़ना उचित है? मेरा उत्तर यही है, यदि आपने बाइबल के विपरीत वचन दे दिया है, तो उसे अविलंब तोड़कर दीनता से परमेश्वर के समक्ष इस प्रकार उतावली में वाचा बांधने की मूढ़ता अंगीकार करके पश्चाताप कीजिए। अपने वचन के कारण प्रभु का अनादर करने की अपेक्षा ये अति उत्तम है कि परमेश्वर के भय में ऐसी प्रतिज्ञा तोड़ी जाए। सौजन्यता, सरलता, विश्वास योग्यता आदि ऐसे गुण जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है, आपके वैवाहिक संबंध की ओर अग्रसर होने वाले प्रत्येक पग को सुशोभित करें। इस कालीन जीवन एवं आगामी सांसारिक जीवन दोनों पर विवाह का प्रभाव पड़ता है। एक विश्वस्त मसीही ऐसा कोई कदम न उठाएगा जो परमेश्वर की इच्छा के प्रतिकूल हो।
हृदय तो मानवीय प्रेम की लालसा करता है, ये प्रेम सिद्ध स्थिरता और पवित्रता से शून्य है। यह इतना मूल्यवान भी नहीं है कि मसीह के प्रेम का स्थान इसे दिया जावे। पत्नी अपने मुक्तिदाता ही में ज्ञान, सामर्थ और वो अनुग्रह पा सकती है जो उसके जीवन को दुख एवं चिंताओं से मुक्त करके अपने दायित्व को संभालने की क्षमता प्रदान कर सके। वो उसी को अपना पथदर्शक एवं बल समझें। स्त्री अपने आप को किसी मित्र को समर्पित करने की अपेक्षा पहले मसीह को सौंप दे। इस समर्पण में बाधक होने वाले अन्य संबंध का पूर्ण परित्याग करे। उनके लिए जो वास्तविक आनंद की खोजी है, आवश्यक है कि उनके प्रत्येक कार्य तथा धन पर परमेश्वर की आशीष हो। प्रिय बहन, यदि आप ऐसा घर बसाना चाहें कि जहां से प्रकाश कभी ओझल न हो, तो ऐसे जन से संबंध न जोड़ना जो परमेश्वर का बैरी हो। विवाह के उपरांत अकेला मसीही होने वाले जन को सलाह। वो जो अविश्वासी हालत में किसी से विवाह कर चुका है, यदि बाद में उसका मन बदलाव हो तो उसके साथी के प्रति विश्वास योग्यता का उत्तरदायित्व और गंभीर बन जाता है। धार्मिक विश्वास के संबंध में उनका कितना भी मतभेद क्यों न हो, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मन परिवर्तन के फलस्वरूप परीक्षा एवं क्लेश का सामना हो तो भी संसार के समस्त संबंधों की अपेक्षा परमेश्वर के अधिकारों को सदैव प्रथम स्थान दिया जावे। हो सकता है कि प्रेम तथा दीनता के आत्मा द्वारा अपनी स्वामी भक्ति का ऐसा प्रभाव पड़े कि अविश्वासी जीता जा सके।